ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ और पाकिस्तान की डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे फिर बातचीत होगी। इस दौरान संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी।
वी ऑल्सो डिसाइडेड टू फर्दर स्पीक ऑन द 12th ऑफ मे एट 1200 आवर्स टू डिस्कस द मोडालिटीज दैट वुड एनेबल द लॉन्जेविटी ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग।
डीजीएमओ ने बताया कि शनिवार दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि पाकिस्तानी सेना ने केवल कुछ घंटे में सीमा पार और नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की और फिर ड्रोन घुसपैठ करके इस सहमति का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। डीजीएमओ ने जोर देकर कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं।
If repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families.
डीजीएमओ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बेहद कुख्यात आतंकी शामिल हैं। वे IC-814 विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों, उनके सहायक षड्यंत्रकारियों को दंडित करने और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ शुरू किया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों को बारीकी से पहचान कर उन पर निशाने साधे।
ऑपरेशन सिंदूर वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड विद अ क्लियर मिलिट्री एम to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. We realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference to target only terrorists and thus prevent collateral damage.
एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि दुश्मन के विमानों को सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोका गया और कुछ विमानों को निश्चित रूप से मार गिराया गया।
As I said, their planes were prevented from coming inside our border, so we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers we would not like to hazard a guess out here.
एयर मार्शल भारती ने यह भी कहा कि वायुसेना ने अपने उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और सभी पायलट सुरक्षित लौट आए हैं। नौसेना अभियान के महानिदेशक वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का निर्णायक जवाब देने के लिए तैनात है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्दिलती ने विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री अब्दिलती को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी अज्ञात चीज या सामग्री को न छुएं, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में NDMA ने कहा कि ये सामग्री खतरनाक हो सकती है और लोगों को गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है। एनडीएमए ने कहा कि अगर लोगों को कोई अज्ञात वस्तु या सामग्री मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन सामान्य रूप से जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डीआईएएल ने परामर्श जारी किया है कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश पर सुरक्षा उपायों में वृद्धि के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने, केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीका ने कल रात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। व्हाइट हाउस के बयान में अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन के साथ वार्ता बहुत ही सार्थक रही और आज सौदे का विवरण साझा किया जाएगा। श्री बेसेंट ने वार्ता की मेजबानी के लिए स्विस सरकार को धन्यवाद दिया। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि अमरीका को व्यापार में 1.2 ट्रिलियन डॉलर का घाटा हो रहा है और ये सौदा उसे दूर करने में सहायता करेगा। विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ये काफी हद तक अनुकूल वैश्विक संकेतों से प्रेरित है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 9 मई तक इक्विटी में 14,167 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस बीच एफपीआई ने बाजार से 3,725 करोड़ रुपए निकाले। भारतीय इक्विटी में ये सकारात्मक रुख अप्रैल में 4,223 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश के बाद आया है। हमास ने एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने की घोषणा की है। एडन अलेक्जेंडर हमास के पास बंधक अंतिम अमरीकी है जो जीवित है। हमास ने कहा कि संघर्ष विराम के प्रयासों के तहत एडन को रिहा किया जा रहा है ताकि गजा में मानवीय सहायता मिल सके। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीका ने इस बारे में सूचना दी है और उसके बदले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। विश्वभर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये न केवल गौतम बुद्ध का जन्म दिवस है बल्कि ऐसा दिन भी है जब महात्मा बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। ये भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में प्रमुख पर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि करुणा के अवतार भगवान बुद्ध के अहिंसा, प्रेम और दयालुता के संदेश मानव जाति के कल्याण का मूलाधार हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के आदर्शों ने समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय के शाश्वत मूल्यों में हमारे विश्वास को सशक्त बनाया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं नैतिकता के आधार पर जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पवित्र दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। उनका गहन ज्ञान चुनौतीपूर्ण समय में हमारे लिए ध्रुव तारे के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के अहिंसा, दया और मध्यम मार्ग के संदेश आज की दुनिया में व्यक्ति और समग्र मानवता दोनों के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। श्रीलंका आज बौद्ध कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन वेसाक पोया मना रहा है। नुवारा एलिया में राज्य वेसाक उत्सव मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। इस पूरे द्वीप में गहरी आध्यात्मिक भक्ति और जीवंत सार्वजनिक प्रस्तुतियों के साथ मनाया जा रहा है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद हर साल ये महत्वपूर्ण दिवस मनाती है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्स, हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। ये विषय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करने और दुनिया भर के समुदायों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में स्वस्थ नर्सिंग कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।